भूली सच्चिदानंद घन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, जगज्जननी अम्बे माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्तवत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप भक्तवृंद परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय आनंद के ये क्षण परम पावन दिव्य तपोभूमि श्री प्रेमपुरी आश्रम का सुंदर प्रांगण ऐसे सुंदर स्थल में जहां महापुरुषों का परम पुरुषार्थ साक्षात हमको अनुभव होता है तो ऐसे सुंदर महापुरुषों के पुरुषार्थ का आनंद लेते हुए उनके बनाए हुए इस सुंदर निर्मित किए हुए इस सुंदर भौतिक जिसको हमको कहना चाहिए जो रूप है भवन का जो पुरुषार्थ महापुरुषों का और भगवान की कृपा का अनुभव हम लोग नित्य प्रति यहां पर सत्संग सुधा वर्षा के माध्यम से करते हैं कि किस प्रकार से ग्रंथ हमको हमारे जीवन के परम लक्ष्य की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं और बार बार याद दिलाने से ही इस मायामय संसार में हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं क्योंकि अन्य जिस प्रकार से कील को गाड़ने में बारंबार हथौड़े के प्रहार की आवश्यकता होती उसी प्रकार से बारंबार का सत्संग ही हमको इस प्रबल माया से बाहर निकाल सकता है। अन्यथा जो हम लोगों का वर्तमान विषय है कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में भगवान यज्ञ पत्नियों पर की हुई कृपा की लीला के माध्यम से हमको आपको पूर्ण विस्तृत लीला में ये समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि वास्तविकता में ये इतनी गहन माया है कि इस माया में जो है बड़े से बड़े योगी पुरुष भी विचलित होने में देर नहीं लगाते महाराज और स्वयं यहां पर जो है वेदज्ञ वेद के पारगामी विद्वानों की स्थिति दिखाई गई है कि समक्ष खड़े हुए ईश्वर को भी वो जान नहीं सकते और दूसरी तरफ क्योंकि हमारे यहां जो है केवल इतना मात्र ही संकेत भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था कि एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय से जाओ चाहे व्यतिरेक से जाओ यानी चाहे स्वीकारात्मक रूप में जाओ तो सब जगह ब्रह्म दिखाई देगा और व्यतिरेक भाव से जाओ अगर सबको नश्वर घोषित करते चले जाओ तो अंत में फिर ब्रह्म बचेगा जिसको हम बीज कहते हैं या मूल कहते हैं। तो दोनों तरफ से किसी तरफ से भी आप जाएं जो भी आप स्वीकार करें तो दोनों रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं चाहे अस्वीकार के रूप में जिसको व्यतिरेक कहते हैं और स्वीकारोक्ति अन्वय पद्धति से चले जाओ सब कुछ ब्रह्म बताते हुए चले जाओ तो भी ब्रह्म और समाप्त करते चले जाओ तो भी अंत में ब्रह्म बचता है। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से जो है उन माननीयाओं का भगवान ने स्वागत किया क्योंकि जहां पर ये जो ब्राह्मणियों की स्थिति है हमने आपने कल जो है एक चर्चा की थी तैतरीय श्रुति के माध्यम से यतो वाई मानि भूतानि जायन्ते की सिद्धि के लिए जब भेजा भृगु ऋषि को वरुण ने उनके पिता वरुण ने कि जाओ सिद्ध करो कि कहां से ये जीव उत्पन्न होते हैं किसमें रहते हैं कहां इनका पालन होता है और कहां समाप्त हो जाते हैं यानी कहां से उत्पन्न होते हैं और कहां समाप्त होने के इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जो है अनुसंधान प्रारंभ किया और सबसे पहला अनुसंधान उन्होंने जब किया संसार में देखा क्योंकि प्रारंभ था जैसे तैराक होता है जब नदी में या जल में प्रवेश करता है तो किनारे किनारे तैरता है और उस किनारे में अपने हाथ पैर मार लेने को ही वो क्या मान लेता है सौभाग्यशाली मान लेता है। इसी प्रकार से अन्नमय कोष यानी शरीर के ऊपर ही अनुसंधान करके भृगु ऋषि ने अपने पिता से बता दिया कि मुझे समझ में आ गया आपके प्रश्न का उत्तर ये तो हुआ इमानी भूतानी जयंती कहां से उत्पन्न होते हैं और कहां जो है समाप्त होते हैं। तो महाराज जब इस प्रकार से उन्होंने अनुसंधान किया और छिछले पानी में देखा जाके तो संसार पूरा अन्नमय संसार का ही सारा खेल दिखाई दिया कि जो कुछ भी है सारा खेल अन्न का है, अन्न के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और अन्न के द्वारा ही सब यहीं पर समाप्ति हो जाती, फिर से हम अन्न बनकर पैदा हो जाते हैं। ये प्रक्रिया उनको दिखाई दी तो उन्होंने घोषित कर दिया कि बस अन्न ही ब्रह्म है। तो जब इस प्रकार से महाराज अन्न को ब्रह्म अनुसंधान है ना, किसी का सहारा नहीं लेना, इसको कहते हैं स्वयं से स्वयं के अंदर प्रकट की हुई बुद्धि है ये। तो जब अपने पिता के पास आए तो वरुण ने कहा कि नहीं भृगु, अभी तुमको जो है वास्तविक उत्तर का पता नहीं चला, पुनः जाओ और पता करो किधर कहां से ये उत्पत्ति है और कहां इसका जो है समापन है। तो जब पुनः महाराज गए, कहां उसे उत्पन्न होती है सृष्टि, कहां रहती है, कहां समाप्त हो जाती, तो जब इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने गए तो थोड़ा सा और गंभीरता से उन्होंने थोड़े और अधिक जल में प्रवेश किया, और उस अधिक जल में प्रविष्ट होने के बाद महाराज उनको दिखाई दिया कि वास्तविकता में तो शरीर या सारे जीव प्राणों से जीवित हैं, जो कुछ भी उत्पन्न होना, रहना और समाप्त होना है सारा खेल किसका है, हमारे प्राणों का है, क्योंकि ये प्राण ना रहे तो इस अन्न का भी कोई अस्तित्व नहीं है, अन्न का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो महाराज उन्होंने देखा कि हमारे जो है अन्न के खाने से हमारे प्राणों का, 10 प्राण जो हमारे हैं शरीर के, और या संपूर्ण जीव मात्र के जो हम लोग 84 लाख योनियां कहते हैं, ये पूर्णतया जब उन्होंने देखा ये सब प्राण संचार पे ही निर्भर है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसलिए उन्होंने प्राणों को ही सर्वोपरि मान लिया। और देखिए आप जो है केवल प्राणों के ही संचार को नियंत्रित कर लेने पर है ना, जो हमारे अनियंत्रित प्राण हैं, हम लोग जो दुखी हैं शरीर से, शारीरिक रोगों से, या हमारे जीवन का जो कष्ट है, बीमारियां जिनको हम कहते हैं, अगर इन 10 प्राणों को नियंत्रित कर लिया जाए तो हमारा शरीर लगभग काफी कुछ स्वस्थ हो जाएगा, यदि पूर्णतया स्वस्थ होना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, उसको कुछ कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा दूषित बीज जो ना जाने कब से कहां से किस प्रकार से चला आ रहा है, उसकी शुद्धि संभव नहीं। लेकिन फिर भी प्राणमय कोष की स्थिति में जाकर स्वयं आप देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ जो है महात्मा बाबा रामदेव जी के नाम से आप जानते हैं, केवल प्राणमय कोष के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने पर सारे शरीर, सारे संसार में उनका डंका बज रहा है। तो महाराज ये प्राणमय शरीर है जहां पर प्राणों के नियंत्रण से आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं बिना औषधि के, है कितनी विचित्र चीज है। तो ऐसे ये विशिष्ट प्राण महाराज, ऐसी शक्ति रखने वाले जो हमको जीवन देते हैं, और हमको ही क्या पूरी विश्व को, जो सृष्टि मात्र है जिसको हम कहते हैं, सबको संचारित करने वाले प्राण, जब ऐसा अनुसंधान किया महाराज तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि बस मुझे समझ में आ गया, ये सब कुछ प्राण से ही उत्पन्न होता है, प्राण में रहता है और प्राण से ही इसकी समाप्ति होती है, क्योंकि प्राणों के निकल जाने पर यह सब शांत हो जाता है। तो प्राण ही है वो जहां से सब कुछ उदय होता है। वरुण ने कहा नहीं, अभी तुमको समझ में नहीं आया, फिर से जाओ और फिर से अनुसंधान करो महाराज। फिर से भृगु ऋषि निकले अपने पिता की आज्ञा मानकर, और पुनः जो है उन्होंने देखा, जब फिर से महाराज उन्होंने अनुसंधान करना प्रारंभ किया, क्या प्राणों से भी बड़ा कुछ है, तो महाराज और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि ये सब मानसिक सृष्टि है। क्या दिखाई दिया, क्योंकि जितना भी संसार हम देखते हैं ये सब हमारे मन का क्या है, संकल्प मात्र है। तो उन्होंने जब इस मन की गहराई में उतर कर देखा कि सारी शक्ति किसकी है, मन की है, क्योंकि मन के संकल्प से ही महाराज मनुष्य पता नहीं क्या क्या कर डालता है, और इस मन के संकल्प से ही शरीर की प्राप्ति होती है। किसी ने संकल्प किया मैं पहलवान हो जाऊं, और महाराज उसके इस मन के संकल्प ने उसको उस प्रक्रिया में लाकर खड़ा कर दिया, वो अपने आप को महाराज नित्य निरंतर तरह तरह के व्यायामों से सुसज्जित करने लगा, और धीरे धीरे एक दुबला पतला दिखने वाला शरीर अपने मन के संकल्प से क्या बन गया। इसी प्रकार से किसी बुद्धिहीन ने, है ना, हमारे यहाँ उदाहरण मिलते हैं, कालिदास के उदाहरण मिलते हैं महाराज, है ना, देखो विद्योत्तमा ने जो है कैसा विचित्र रूप दिखाया महाराज, है विद्वानों ने विद्योत्तमा को नीचा दिखाने के लिए मूर्ख कालिदास से उनका विवाह कर दिया महाराज, और उस कालिदास को बेचारे को एक साधारण सा व्यक्ति, लकड़ी काट के आजीविका कमाने वाला, कुछ भी नहीं जानता, न काखा गागा जानता है, ना महाराज किसी शब्द से उसका कोई मतलब है, वो एक साधारण सा लकड़हारा है महाराज, और रानी के संग उसका विवाह कर दिया गया और ऐसा दर्शा दिया गया कि सबसे विश्व का बुद्धिमान व्यक्ति ये है। लेकिन जब विद्योत्तमा को महाराज पता चला कि ये तो निरा मूर्ख है, अपने राजमहल से निकाल के बाहर कर दिया गया कालिदास जी। लेकिन जब कालिदास जी को अपमान अनुभव हुआ, मूर्ख होने के संग संग जब अपमानित हुए, तो उनके मन के अंदर संकल्प जागा कि मैं जो है विद्वान बनूंगा महाराज। और देखो एक महामूर्ख महाविद्वान में परिणित हो गया। किसके कारण? मन की जो संकल्प शक्ति है, क्योंकि ये जो जितना भी जो कुछ भी जगत हमको दिखाई देता है, ये सब किसके ऊपर खड़ा हुआ है? हमारे आपके मन के संकल्प के ऊपर ही है। और यहां तक कि अध्यात्म की सत्ता भी कहां पर आकर, भाई मन को ही तो माना जाता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध। ये मन का मुड़ जाना ही, परमात्मा की ओर मुड़ जाए तो आप मुक्त हैं, संसार की ओर मुड़ जाए तो आप बद्ध हैं। बस यही बंधन और मुक्ति का खेल है। इस मन का ही सारा क्रिया मानसिक सृष्टि महाराज। जब इस मानसिक रूप को महाराज इतने विस्तृत रूप में उन्होंने अनुसंधान किया, तो उनको दिखाई दिया ये प्राण भी अगर संचालित हैं तो किसके माध्यम से? उस मन के संकल्प से ही महाराज हैं। तो जब उन्होंने पूर्णतया निश्चय कर लिया कि बस जो कुछ है वो क्या है? मन ही है महाराज। आकर पिता से कहा कि बस मुझे समझ में आ गया, इस मन के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न होता है, इस मन के द्वारा ही रहता है। क्योंकि जब मन आदमी का समाप्त हो जाता है तो वो लगभग मृत्यु के नजदीक आ जाता है। मृत्यु के मन के द्वारा रहता है और मन के द्वारा ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। बोले ये मन ही सब कुछ है, मनोमय कोश में पहुंच गए महाराज। और मानसिक सृष्टि देखो, मन के संकल्प से ही मनुष्य ना जाने क्या क्या कर डालता है इस संसार में। ये मानसिक शक्ति है महाराज हमारी आपकी। तो ऐसी प्राण शक्ति से भी बड़ी कौन सी है? मानसिक शक्ति है। हमारे पास पहले यहां प्रेमपुरी में एक डॉक्टर आते थे, सर्जन थे डॉक्टर पई। उन्होंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण बताया हमारा। बोले हमारे पास एक 85 वर्ष की वृद्धा आई और उसके जो है वक्षस्थल में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर था उसको। अब बोले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या करूं, इस उम्र में 85 साल की उम्र में इसका क्या ऑपरेशन करूं। गांठ थी और मालूम था ये कैंसर है। तो उन्होंने देखो मानसिक सृष्टि क्या है, मन को ब्रह्म क्यों कहा गया। तो जब महाराज उन्होंने क्या किया कि बोले कुछ समझ में नहीं आया, बड़ी देर तक सोचता रहा इस वृद्ध स्त्री को मैं करूं तो क्या करूं। तो उन्होंने जो है रक्त नहीं शरीर में, ऑपरेशन संभव नहीं, रिकवरी होगी कि नहीं होगी। तो जब उन्होंने कहा कि अब क्या करें, तो उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ा और उस वृद्ध स्त्री से कह दिया कि तुमको किसी ने मूर्ख बना दिया, कुछ नहीं है तुमको कैंसर वैंसर, शुद्ध झूठ बोल दिया। और महाराज इतना उनका कहना था कि वो तो वृद्ध स्त्री जो थी वो इतनी प्रसन्न हो गई और घर जाके महाराज उसने घोषित कर दिया मुझे कोई कैंसर वैंसर नहीं, डॉक्टर ने बता दिया। सब बेकार की बातें। कहते हैं 6 महीने बाद जब वो माता वापस आई 85 साल की वृद्धा, तो उसकी गांठ गायब हो गई। बोले मैं आश्चर्यचकित हो गया, देख के गई कहां गांठ। ये मानसिक संकल्प शक्ति है महाराज। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया अपने जीवन का महाराज, कि एक बहुत हट्टा खट्टा पहलवान टाइप का आदमी उनके पास आया और पूरा स्वस्थ महाराज, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल स्वस्थ। और साधारण सी बीमारी, जैसे ही उसको बताया गया कि ये बीमारी तुमको लगी है, उसी समय से उसको पता नहीं क्या हुआ, मन ही मन में उसको लगने लगा कि मैं तो बीमार हो गया, मैं मर जाऊंगा। और 6 महीने के भीतर मर गया वो। ये हमारे मन की शक्ति है महाराज। स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति को समाप्त कर देती है और अस्वस्थ से अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कर देती है महाराज। इसलिए भृगु ऋषि ने महाराज कहा कि अपने पिता से, ये सारा संसार मन में ही रहता है, मन से ही उदय होता है, मन में ही रहता है और मन के संकल्प से ही इसकी समाप्ति होती, मन ही ब्रह्म है। वरुण ने कहा नहीं, अभी तुमको सत्य का पता नहीं चला, फिर से एक बार विचार करो। पुनः लौटे महाराज, देखो अब और ज्यादा गहरे जल में उतरना आ गया उनको, है ना। तो महाराज उसके बाद आया विज्ञानमय कोश, क्योंकि आजकल का जो विज्ञान है वो क्या है, वैज्ञानिक ही सर्वोपरि माने जाते हैं कि नहीं, देखो आप यहां से फोन मिलाया, अमेरिका से बात कर लो। कभी घर में एक फोन होता था, अब हर शरीर में दो फोन लगे होते हैं महाराज, एक इधर एक उधर है, और एक एक घर में दस दस फोन, कितने हो गए, दस दस फोन हो गए महाराज, और सबके नाम का अपना अपना फोन हो गया। कैसी विचित्र चीज है देखो विज्ञान, इसको क्या कहते हैं, ये महाराज विज्ञानमय कोष पहुंचे, बुद्धि का जो परम जो शक्ति हमारी है ना, जैसे हमारे शरीर को जब इस प्रकृति ने या परमात्मा ने रचा महाराज, अद्भुत चीज है ये, इस विश्व में ऐसी चीज बनी नहीं है ना। जब देखो आपकी जो किडनी जो फेल हो जाती महाराज, और साधारण सी छन्नी है, क्या है आपके दूषित रक्त को क्या करती है, शुद्ध करती है, किडनी जिसको आप गुर्दा बोलते हैं, तो ऐसी जो ये किडनी है, इसका केवल अगर स्वस्थ मनुष्य, उसका जो गीता का सूत्र है युक्ताहारस्य विहारस्य, युक्ताहार विहारस्य, तो महाराज युक्ताहार विहारस्य अगर हो जाए तो केवल 25% किडनी से आपका 100 साल का जीवन निकल सकता है। कितना, केवल दो किडनी में से भी केवल 25%, मतलब 175% फिर भी किडनी आपकी खाली पड़ी रहेगी। अगर 100 साल का जीवन आप केवल शास्त्र के नियम के अनुसार जिए, शुद्ध खाना पीना पहनना ओढ़ना सोना जगना, अगर आपकी प्रक्रिया है ना जो है इस प्रकार की है। हमारे पास एक जो है सरदार जी आते थे सहारनपुर में, वो बताते थे मेरे पिताजी की आयु जो है 95 वर्ष में उन्होंने शरीर छोड़ा, और उनका एक भी दांत गिरा नहीं था, 32 के 32 दांत। लेकिन उन्होंने बताया कैसे संभव हुआ, बोले महाराज जब आम का सीजन आता था तो वो रोटी दाल चावल सब छोड़ देते थे, केवल एक ही आहार उनका होता था, आम और दूध। मतलब जितने दिन आम का सीजन चलता था केवल आम और दूध के अलावा कुछ भी वो नहीं खाते थे। और शायद आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम, फलों में आम को इसीलिए राजा बोला जाता है, सारे फलों के अंदर जितने भी विटामिन्स होते हैं वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आम का के अंदर जितने भी विटामिन्स हैं वो 6 महीने तक चलते हैं, ये आम की विशेषता है, जरा ध्यान देना। तो ये जो प्रक्रिया हमारे यहाँ है, ऋतु फल जो हमारे यहाँ पूजा पाठ में या भगवान में जो है चढ़ाया जाता है ऋतु फल को, कि किस लिए ऋतु फल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितने भी ऋतु फल आते हैं सब प्रकृति ने हमारे स्वास्थ्य के लिए बनाए। तो जरा विचार कीजिए, अगर हम शास्त्र के नियम के अनुसार चलें तो किडनी का केवल और केवल 25% भाग इस्तेमाल होता है, 175% किडनी फिर भी फ्री रहती है। जैसे आपकी चाय की छानने की छन्नी होती नहीं, कितना पार्ट इस्तेमाल करती, इतना तो करती है, लेकिन जब आप उसकी दुर्गति कर देते हो तो पूरी छन्नी क्या हो जाती है, आपने देखा नहीं, माताएं जो हैं आप क्या एक बर्तन मांजने का बर्तन मलने की जगह होती है ना, तो जब शुरू शुरू में नया लगता है तो माताएं जो है पूर्ण लापरवाही का आनंद लेती और सारा कूड़ा कचड़ा उसमें क्या कर देती, और वो इतने बड़े बड़े छेद वाली छन्नी भी क्या हो जाती, और उसके बाद पूरा घर भर उसको क्या करता रहता है, पूरा घर मिलके उसको साफ करता रहता है, और एक दूसरे को क्या कहते रहते हैं, कोसते रहते हैं महाराज, है ना, तुमने गलती की तुमने। तो हम लोग जब दुरुपयोग करते हैं किसी चीज का तो अच्छी से अच्छी वस्तु भी क्या हो जाती है ना, इसी प्रकार से हमारा है ब्रेन, है ना, जिसको आप लोग बुद्धि कहते हैं, ये है महाराज विज्ञानमय कोष। आपको मालूम है इस दुनिया का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक की बात कर रहा हूं महाराज, मैं साधारण व्यक्ति की बात नहीं, जो सबसे ज्यादा अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी अपने ब्रेन का केवल 5% हिस्सा इस्तेमाल करता है, जरा विचार करो कितना, 95% ब्रेन खाली पड़ा रहता है, और हम आप तो पॉइंट में इस्तेमाल करते हैं, जो खाना पीना सोना और केवल कितना पॉइंट्स में, 1 पॉइंट भी इस्तेमाल नहीं करते, पूरा का पूरा ब्रेन जो बुद्धि शक्ति हमको विज्ञान शक्ति दी गई है वो सब। लेकिन हर चीज यहां पर तीन स्तर में है, तामस, राजस और सात्विक। जो वर्तमान विज्ञान जिसको हम लोग विज्ञान कहते हैं, ये विज्ञान है तो लेकिन है तामसी, इसीलिए इस विज्ञान ने पूरी सृष्टि को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया हमारा, है ना, तामसी सृष्टि होने के कारण। विज्ञान का इस्तेमाल तो हुआ, बुद्धि का इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन उसमें साधना ना होने के कारण, उसमें परमेश्वर का निवास ना होने के कारण संपूर्ण प्रकृति जो है वो दूषित हो गई। ये परिणाम मिला। यद्यपि विकास तो बहुत कुछ दिखाई दिया, हम जो है अंतरिक्ष में पहुंच गए, अंतरिक्ष यानों का निर्माण हो गया, ना जाने विज्ञान के क्षेत्र में कहां कहां से हमने बुद्धि के, है ना, प्रयोग कर डाले। तो विज्ञानमय कोष जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, शास्त्र की भाषा में। और वहीं पर राजस विज्ञान है, ये जो आपका सजा हुआ साज सज्जा का जो रूप है, सारा राजस विज्ञान है हमारा, है ना। हम सोने चांदी गहने कपड़े जो कुछ भी पहनते हैं, ये सब क्या है, ये सब हमारी बुद्धि का राजस विज्ञान है हमारा। तरह तरह के वस्त्रों का निर्माण, तरह तरह के आभूषणों का निर्माण, सोने चांदी का जो है खोज कर लेना, उसके आभूषण बना लेना, ये सब जो है ये क्या है, ये महाराज राजस विज्ञान हो गया। और सात्विक विज्ञान जो हमारे ऋषियों का बिना किसी लेबोरेटरी के, बिना किसी अनुसंधान कक्ष के, महाराज खाली उनकी अपनी कुटिया ही महाराज वह अनुसंधान का केंद्र होती थी, और उसी से महाराज उन्होंने हजारों जड़ी बूटियों का अनुसंधान कर डाला। ना कोई यंत्र, ना कोई महाराज किसी प्रकार का उनके पास विशेष साधन, और किसी भी प्रकार का विशेष बाह्य सहयोग भी नहीं, है ना। ऐसा होने पर भी उन्होंने महाराज, चूंकि साधना प्रदान जो सात्विक बुद्धि है वो महाराज जो है सात्विक विज्ञान का निर्माण करती है, तो इसलिए देखो अब पुनः जिस आयुर्वेद को बिल्कुल ढकोसला माना जाने लगा था, है, लोग कहते थे बिल्कुल पागलपन मूर्खता है, अब समझ में आ रहा है कि हाँ आयुर्वेद में भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ है महाराज, लेकिन हमारे यहाँ अनुसंधान करने की प्रक्रिया ही गलत है, इसलिए हम लोग जो है हर चीज को रामबाण मानकर चलते हैं, है ना। हमारे यहाँ एक बड़ी जो है बहुत बड़ी भूल है कि हर चीज हमारे यहाँ आयुर्वेद की हर चीज रामबाण, ऐसा नहीं है। हर चीज के अंदर कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण होते हैं, जितने उसके अंदर इफेक्ट हैं उतने ही साइड इफेक्ट हैं, दोनों चीजें होती हैं। तो हम इस चीज को भूल करके उसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, इससे विज्ञान दूषित हो जाता। तो आयुर्वेद, केवल आयुर्वेद ही नहीं, जितनी भी हमारी प्रक्रियाएं हैं जीवन जीने की, जिसमें प्रकृति के संग बिल्कुल भी कोई छेड़खानी नहीं की गई। महाराज देखो आप आज भी इतने बड़े वैज्ञानिक युग में हम आप जी रहे हैं, यहां बैठे हुए कितने लोगों ने शनि ग्रह को देखा है, क्यों भाई देखा किसी ने, हैं, जरा सोचो। अगर हम बता भी दें कि फलानी जगह शनि ग्रह है तो आपको दिखाई देने वाला नहीं। उन महाराज ऋषियों ने, मनीषियों ने, ज्योतिष शास्त्र जो हमारे यहां वेद का अंग माना गया, इन ग्रहों को आपको दिखाई दिया कभी? इतने दिन हो गए आपको इस दुनिया में आए हुए, आपने कभी मंगल ग्रह को देखा है? खाली चंद्रमा देखा है बस, क्योंकि वो बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई देता। एक शुक्र ग्रह आपने देखा, चमकता हुआ तारा, बिल्कुल शुक्र सबसे नजदीक है। लेकिन जो हमारे दूर के ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह है या शनि ग्रह है, दिखाई देता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बुद्धि को महाराज विज्ञान कोष में ले जाकर स्थित करना पड़ेगा, तब जाकर आपको इन सब चीजों का अनुसंधान, नक्षत्रों का अनुसंधान किया महाराज, ग्रहों का अनुसंधान किया, दवा औषधियों का अनुसंधान किया, ना जाने कितनी चीजों का अनुसंधान हुआ, धातुओं का। जरा सोचो, सोने के आभूषण और ये रत्न हमारे यहां कब से हैं? आज से हैं। आपको मालूम है ये कोहिनूर हीरा कितने कैरेट का था? 750 कैरेट का। कितने का? पहाड़ बोला जाता था, बोला जाता रत्नों का पहाड़। कितना बड़ा? इससे भी डबल। जितना बड़ा ये दिखाई दे रहा माइक, इससे भी बड़ा, इतना बड़ा था कोहिनूर हीरा। और इसको और सुंदर बनाने के लिए जब महाराज बाबर ने विदेशियों को दे दिया, तो उन्होंने जो है उसको और सुंदर कर, और सुंदर तो क्या किया, तोड़ फोड़ के 136 कैरेट का बना के ले आए। और उसके बाद जब इंग्लैंड गया, तो उसको उन्होंने और ज्यादा अनुसंधान कर डाला, तो अब वो केवल 105 कैरेट, अभी भी वो 105 कैरेट का है, जिसको आप लोग कोहिनूर हीरा हम लोगों का जो ऐतिहासिक हीरा माना जाता है, जरा सोचो। तो वो विज्ञान क्या था महाराज, कौन सी इनके पास लेबोरेटरी थी जो है हमारे ऋषि मनीषियों के पास, कौन सा इनके पास अनुसंधान कक्ष था, ये स्वर्ण के आभूषण, स्वर्ण का बनाना, स्वर्ण का गलाना, स्वर्ण को शुद्ध करना, कौन से वैज्ञानिकों ने इनको पढ़ाया था। लेकिन ये सब चीजें जो है विज्ञानमय कोष, क्योंकि हमारी बुद्धि शक्ति इसके आगे संपूर्ण शक्तियां क्या है, देखो बुद्धि शक्ति से ही मनुष्य ने जो है हाथी के ऊपर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया महाराज, उसको पालतू बना लिया। और पूरे विश्व में महाराज इंडियन एलिफेंट प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में महाराज स्पेशल विशेष रूप से कहीं भी विश्व में है हाथी को युद्ध के क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन जब विदेशियों ने आया हाथी ऐसी चीज को भारत में किसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है, युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया जाता है महाराज। ये था ये विज्ञान में, और कैसा विज्ञान, सात्विक विज्ञान, यहां पर किसी प्रकार से प्रकृति के संग छेड़छाड़ नहीं है, जो सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन जो वर्तमान का तामस विज्ञान है, जिसने पूरी प्रकृति को ही अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक सब कुछ दूषित हो चुका, न जल शुद्ध है, ना वायु शुद्ध है, ना अंतरिक्ष शुद्ध है, कुछ भी शुद्ध नहीं बचा, सब कुछ अशुद्ध, केवल किसके कारण, तामसी है, क्योंकि शक्ति है, विज्ञान शक्ति है महाराज, और साधारण नहीं, क्योंकि महाराज इस विज्ञान की शक्ति में ही सारी शक्तियां दिखाई दी, किसको, भृगु ऋषि को महाराज, साधारण ऋषि नहीं थे भृगु ऋषि, तो शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र को जो जिंदा कर देने की शक्ति रखने वाले शुक्राचार्य जी महाराज, ऐसे संजीवनी मंत्र के जानने वाले भृगु के पुत्र महाराज, और भृगु ऋषि जो है उन्होंने अनुसंधान किया और विज्ञान को अभी भी आप देख सकते हैं महाराज, है ना, एक वैज्ञानिक हैं जापान के जो केवल व्हील चेयर पे चलते हैं, और उनकी पूरी कुर्सी ही उसी तरीके से बनाई गई, अभी नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, और कुछ नहीं उनका शरीर का एक भी अंग, केवल ब्रेन काम करता है, केवल क्या काम करता है, और उनके सबसे महंगा ब्रेन माना जाता है इस विश्व में, किसी का सबसे महंगा ब्रेन अगर है तो उनका है, अभी नाम आपको कल बताएंगे, देखो अभी भूल गया दिमाग से, तो उनके जो है दिमाग की कीमत वैज्ञानिकों ने अरबों डॉलर में निश्चित की, कितने में, अरबों डॉलर उनके ब्रेन की कीमत है। यह है विज्ञानमय कोष, यानी जिसको हम है, कहते हैं भृगु ऋषि ने कहा महाराज ये विज्ञान ही ब्रह्म है ना। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास, साइंटिस्ट के पास जाओ और बोलो महाराज हम सत्संग करने जाते हैं, बोले कहां सत्संग करते हो, आजकल तो साइंस का युग है, कौन सा युग है, ऐसा ही किसको लगा, भृगु ऋषि को भी महाराज उस समय ऐसा ही लगा था कि जो कुछ भी है, और हर बार मैं आपसे पूछता हूं और फिर से एक बार पूछता हूं, क्यों भाई, अगर महात्मा बीमार हो जाए और महात्मा के बीमार होने पर डॉक्टर उसको ठीक कर दे, तो डॉक्टर बड़ा या महात्मा बड़ा, क्यों भाई। अरे यहां पर आने वाले स्वामी अखंडानंद जी से भी शुरू किया जाए, जितने भी महात्मा हुए सब बीमार हुए कि नहीं हुए, और सबको डॉक्टरों ने ठीक किया कि नहीं किया, तो फिर यहां किसकी फोटो लगानी चाहिए, डॉक्टर की या महात्मा की, क्या कहना आपका, हाँ फिर महात्मा की क्यों लगानी बताओ। इसका उत्तर है अगला वाला कोष, है ना, क्योंकि विज्ञानमय कोष कहां तक सीमित है, फिजिकल वर्ल्ड जिसको आप भौतिक जगत कहते हैं, इसकी सीमा रेखा केवल इतनी ही है, और इस विज्ञानमय कोष को ही, जहां पर विज्ञानमय कोष क्या हो जाता है, समाप्त होता है ना, इसी को ही हमारे यहां अपरा कहा गया। ये सब क्या है, क्योंकि ये सब वैदिक जो वेद तक का ज्ञान है ना, क्योंकि हमारे यहां तो इससे भी ऊपर जो है स्थिति है वो क्या है, यज्ञ की। हमारे यहां वेदों में किसका वर्णन है, बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन है महाराज, और उन यज्ञों के माध्यम से ही, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की वो किसके द्वारा की, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, तो प्रारंभ काल में जो है सृष्टि का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ, यज्ञ के द्वारा। अभी यज्ञ के विज्ञान तक तो ये वैज्ञानिक पहुंचे नहीं है, पहुंचेंगे अभी थोड़े दिन बाद पहुंचेंगे, क्योंकि ये ऋषियों का बनाया वो विज्ञान था, यज्ञ के माध्यम से हर चीज की प्राप्ति महाराज, उस देवता का आवाहन, उस जो है ऋषि का आवाहन हमको जो है तरह तरह के विज्ञान को देने वाला होता है। तो ये महाराज विज्ञान का चरम है जिसको हम लोग वेद कहते हैं, है ना। ये बड़े बड़े यज्ञ जो अभी तो हम लोगों ने सब समाप्त हो गई, संस्कृति ही सारी समाप्त हो गई महाराज, और यज्ञ को भी हमने जो है एक पागलपन समझ लिया, लेकिन ये पागलपन नहीं है, ये वो विज्ञान था ऋषियों के पास महाराज, जिससे उन्होंने इतने बड़े बड़े, इसीलिए हमारे यहाँ आप लोगों ने जो है जब उपनिषद प्रारंभ करते हैं या उपनिषद के बारे में बताया जाता है तो वहां पर आपने अक्सर उपनिषद के प्रारंभ में ही सुना होगा, प्रश्न उपनिषद में आपने सुना होगा कि जो है ऋषि लोग जो है दूसरे ऋषि से अपने संशयों का निवारण करने के लिए हाथ में हवन की यज्ञ की समिधा लेकर पहुंचे, है ना। तो समिधा लेकर जाते थे महाराज, और फिर यज्ञ के द्वारा उनका क्या हो जाता था, उनका जो है शुद्धि की जाती थी हवन यज्ञ के द्वारा शुद्धि, और फिर नित्य निरंतर यज्ञ करके उनको ब्रह्म का ज्ञान दिया जाता था महाराज। ये प्रक्रिया थी गुरुकुलों की, आप उपनिषद में पढ़ भी सकते हैं और श्रवण करने को भी आपको मिलेगा पूरा। जब तो कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान का जो चरम है ना, जहां पर जाकर वेद भी ना इति कहकर घोषित कर देते हैं कि इतना ही नहीं है। ये मत समझ लेना कि बस यहीं पर अंत हो गया, विज्ञान ही अंत नहीं है, इसके बाद भी बहुत कुछ है, लेकिन हमारी सीमा रेखा यहां पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यहां पर जो स्थिति उन ब्राह्मणियों की है ना, जो हम अपनी लीला उसको जो समझना चाहते हैं, है ना, इस स्तर को, विज्ञानमय स्तर को भी जिसने पार कर लिया, भगवान कहते हैं कि नन्वद्धामयि कुर्वन्ति कुशला स्वार्थ दर्शना अहेतुक व्यवहिताम भक्तिमात्म प्रिय यथा। भगवान कहते हैं कि इस संसार में कहते हैं कुशला स्वार्थ दर्शना, कहते हैं जो सच्ची भलाई अपनी चाहता है और जो उनमें सबसे बुद्धिमान पुरुष हैं, कहते हैं वो अपना परम प्रियतम मानकर मुझसे प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं, भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे से प्रेम करने लगो, व्यर्थ में करने लगो, क्योंकि इस स्तर पर आकर उसने विज्ञानमय कोष को पार कर लिया महाराज, है ना। क्योंकि भृगु ऋषि जब लौट के आए तो पिता से बोले, महाराज बस सारी कहानी समझ में आ गई मुझे। क्या कहानी समझ में आ गई, ये सारा खेल विज्ञान का है। किसका है, हाँ ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि की जो प्रचंड शक्ति है वो वैज्ञानिक कहलाती है, क्योंकि उसके पहले तो वो ज्ञानी है। शास्त्र को रट लेना ये ज्ञान कहलाता है, लेकिन शास्त्र के अर्थ को समझ लेना ये परम ज्ञान कहलाता है, और शास्त्र के अर्थ को समझने के बाद उसके तत्व को निकाल लेना ये विज्ञान कहलाता है ना। जैसे दूध को दही में बदल देना ये क्या है, ज्ञान है हमारा, लेकिन उस दही को मथ करके उसमें से उसके तत्व को क्या कर लेना, बाहर निकाल लेना, ये क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता महाराज। और उस घृत को है जो मक्खन है उसको भी जो है शुद्ध करके क्या बना लेना, घृत बना लेना, स्थिर चीज बना लेना, ये परम विज्ञान की अवस्था है महाराज। तो ऐसा जो परम वैज्ञानिक रूप है, जब भगवान कहते हैं कि जो ये परम विज्ञान है, भृगु ऋषि कहते हैं बस मुझको बात समझ में आ गई, सारा खेल यही है, ये विज्ञान का ही सारा खेल है, और वास्तविकता में वर्तमान दुनिया जो कुछ भी आपको बताएगी सब, और आप स्वयं वैज्ञानिक चीजों को देखकर आश्चर्यचकित होते हो कि नहीं होते, विज्ञान की देखो आप टीवी कभी कल्पना की थी आपने, लेकिन महाराज हमारे यहां किस समय ये विज्ञान की सीमा थी। भगवान ने जो है अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए और संजय जो है उनके धृतराष्ट्र के कक्ष में ही बैठकर उनको महाभारत का क्या सुना रहे हैं, ये कौन सा विज्ञान है महाराज, जो अभी वैज्ञानिकों को पता नहीं है महाराज, ये सनातन धर्म है महाराज, है ना। संजय जो है वेदव्यास जी के द्वारा शक्ति दिए जाने पर संजय धृतराष्ट्र को जो है महाभारत का हाल सुना रहे हैं, है? तो ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान का जो चरम है महाराज, ये सात्विक विज्ञान जहां पर तपस्या मुख्यतया जो है अपने रूप में होती है, तो ऐसे स्थिति को भी जो पार कर गया है, यहां पर भगवान कहते हैं कि मुझसे प्रेम क्यों करता है, ये भगवान ने यहां पर बताने की चेष्टा की है। इसलिए प्रेम करता है, इन जो बुद्धिहीन जिन्होंने ना वेद पढ़े ना शास्त्र पढ़े ना कोई बहुत बड़े बड़े जो है मंत्रों को का जाप किया, ना बड़े बड़े यज्ञ किए, ना गुरुकुल में निवास किया, ना कोई संस्कार हुआ, इन ब्राह्मणियों को क्या मिला, तो ये समझने की वस्तु है यहां पर हमारे लिए। प्राण बुद्धि मना स्वात्मा दारापत्य धनादया यत संपकार्थ प्रिया आसंस्तता को न्यपरा प्रिया। कहते हैं कि प्राण बुद्धि मन शरीर स्वजन स्त्री पति पुत्र धन, कहते हैं संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, ये जितना भी जो कुछ भी नाटक है, जिसके सानिध्य से यत संपर्कात, जिसके संपर्क से प्रिया प्रिय लगता है महाराज, यत संपर्कात प्रिया, कहते हैं ये जब जान लेता है मनुष्य, ये विज्ञान से ऊपर उठने की क्रिया है महाराज। इसलिए हम सत्संग करते हैं, सत्संग में क्या मिलेगा महाराज, है ना, हम वैज्ञानिक से ऊपर क्यों उठ गए, क्योंकि विज्ञान जगत जो है वो केवल और केवल मात्र भौतिकता तक ही सीमित है, लेकिन ये वो विज्ञान है जो इस विज्ञान को भी पार कर गया। भगवान कहते हैं यत संपर्कात प्रिया, कहते हैं जिसके संपर्क के कारण ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, प्राण बुद्धि मन शरीर, देखो सारे कोष आ गए कि नहीं, प्राणमय कोष विज्ञानमय कोष मनोमय कोष है और अन्नमय कोष यानी शरीर, प्राण बुद्धि मन स्वात्मा, कहते हैं मन बुद्धि शरीर स्वजन स्त्री पुत्र कलत्र जो कुछ भी है, मुझ आत्मा परमात्मा से ही प्रकाशित है, और जब उस प्रकाश को वो समझ लेता है, तब महाराज वो परमपिता परमेश्वर से परम प्रेम करने लगता है, फिर उसको दूसरी कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। वो इन ब्राह्मणियों ने महाराज प्राप्त कर लिया था, और इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने आते समय अपने पति पुत्र मित्र जो कुछ भी थे महाराज सबकी अवहेलना करके भगवान के लिए भोजन बांधा और महाराज चल पड़ी। देखिए ये जो अवहेलना करने की शक्ति है, ये सबके बस का रोग नहीं है, ये वही कर सकता है जिसने महाराज आत्म तत्व को समझ लिया हो, जिसने परमेश्वर से अहेतुकी प्रेम कर लिया हो, जहां पर परमेश्वर से कोई स्वार्थ ना रह जाए, क्योंकि स्वयं रामचरितमानस कहती है महाराज, भगवान भोलेनाथ कहते हैं है? उमा जोग जप ध्यान तप, चाहे ध्यान कर लो चाहे दान कर लो, दोनों चीजें शामिल कर लो, उमा जोग जप दान तप नाना मख, मख कहते हैं यज्ञ को, नाना मख व्रत, बड़े से बड़े व्रत, नाना मख व्रत नेम, बड़े बड़े नियमों को पालन करना, उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करही असि जस निष्केवल प्रेम। जैसी कृपा भगवान की निष्काम प्रेमी के ऊपर होती है, ये इतनी सारी जो चीजें गिनाई गई हैं, इसकी बड़ी से बड़ी प्रक्रिया को स्वीकार कर लेने पर भी भगवान उसके ऊपर वो कृपा नहीं कर सकते हैं, और उसका साक्षात उदाहरण रावण और विभीषण है। जो संपत शिव राम नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक था महाराज, रावण क्या था, ऐसा भयंकर वैज्ञानिक था महाराज, उसने सोने की लंका और उड़ती हुई लंका बनाई महाराज, ऐसा जोरदार, लेकिन ऐसी लंका जो संपत शिव राम नहीं, दीन दिए दशमात, दस दस सिर चढ़ाकर जो प्राप्त किया उस महाराज लंका को, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ, विभीषण को कुछ बिना किए मिल गई, क्योंकि विभीषण के पास भगवान की सत्ता के प्रति क्या था, निष्केवल प्रेम था, अहेतुकी प्रेम था, और इस कारण महाराज ये साधारण सा सांसारिक जो भौतिक साम्राज्य है वो खिलौने की तरह उनको प्राप्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भृगु ऋषि ने जब आकर कहा कि महाराज ये विज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, यही ब्रह्म है, तो वरुण ने कहा नहीं पुत्र, अभी तुमको समझ नहीं आया, फिर से अनुसंधान करो, क्योंकि अब तो महाराज गहराई में उतरना आ गया, बुद्धि की शक्ति को समझना आ गया, और फिजिकली भी आप अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो केवल 5% तो वैज्ञानिक इस्तेमाल करता है, हम लोग तो पॉइंटों में पूरा का पूरा ब्रेन जिंदगी भर का खाली चला जाता है हमारा। जरा सोचिए कितनी बड़ी प्रचंड शक्ति आपको दी है परमेश्वर ने फिजिकली, जिसको हम लोग भौतिक कहते हैं महाराज, ये बुद्धि जो ब्रेन है आपके पास, जरा सोचो विचार करो हैं। तो जो इस प्रकार का विज्ञान महाराज, इससे भी जब ऊपर उठने की बात आई तब उन्होंने ध्यानस्थ होकर महाराज फिर अनुसंधान करना प्रारंभ किया। उन्होंने देखा आनंदमय, कहते हैं ये सब कुछ प्रकट होने वाला किससे है, आनंद से, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं। क्या कहते हैं, सच्चित और आनंद, वो है सत्ता है, शून्य नहीं है, क्या है, सत्ता है महाराज, इसलिए उसी को सत्य कहा जाता है। तो सत्य स्वरूप परमेश्वर जो आनंदमय अवस्था है, उन्होंने कहा बस यही ब्रह्म है, मुझे समझ में आ गया। लेकिन महाराज जो है आनंदमय सच्चिदानंद स्वरूप, क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, लेकिन जब हमारे जो है आत्मज्ञानी महापुरुषों ने भाष्यकार शंकराचार्य जी के पास गए तो महाराज उन्होंने कहा कि न वै पंच कोशा, अभी आप पाठ करेंगे नहीं थोड़ी देर बाद, कि इन ये तो पांच कोश हुए ना, सबसे पहला अन्नमय कोश, फिर उसके बाद प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय और आनंदमय, पांच कोश हो गए, न वै पंच कोशा, इन पांचों आनंदमय कोश भी नहीं, तुम शुद्ध आत्मा हो, है ना, क्योंकि जो है तैतृय श्रुति तो आनंदमय कोश में जाकर वरुण ने जो है घोषित कर दिया कि पुत्र तुमको सत्य के दर्शन हो गए। क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि महाराज इसके बाद फिर कहने सुनने का और पता करने का कुछ भी कार्य नहीं रह जाता, इंद्रियों से पता नहीं किया जा सकता, बुद्धि का जोर लगाया नहीं जा सकता, वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए उसके बारे में ना तो चिंतन कर सकते हैं, ना बता सकते हैं, ना उसको समझा जा सकता है और ना ही समझाया जा सकता है। उसी स्थिति को हमारे जो है शास्त्रकारों ने क्या कहा, चिदानंद रूपः शिवोहम, हाँ शिव जी का शिवोहम कहने का मतलब यहां पर वो भोलेनाथ का स्वरूप नहीं है, शिवोहम कहने का मतलब हमारा जो परम कल्याण स्वरूप जिसको हम लोग कहते हैं, शिव शब्द का अर्थ क्या है, कल्याण, शिवोहम का मतलब मैं साक्षात कल्याण स्वरूप हूं, मेरे से बढ़कर मेरा कोई दूसरा कल्याणमय स्वरूप नहीं है। लेकिन उस समय ये कहते समय इस शरीर को उठा के, इस खोल को उठाकर आपको क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, लेकिन हम गलती यही करते हैं कि हम शिवोहम कहते समय इसी को क्या मान लेते हैं, ये जो 3.5 हाथ का खोल है इसी को हम क्या घोषित कर देते हैं, चिदानंद रूपा, हाँ तो हम जब बाहर कोई पूछता है कि तुम क्या हो तो हम क्या कहते हैं, मैं ब्रह्म हूं, कौन सा ब्रह्म, ये 3.5 हाथ के शरीर को हम क्या घोषित कर देते हैं, ब्रह्म हूं, और सामने जो खड़ा वो बोले वो तो महामूर्ख है ना अरे तुम भी ब्रह्म हो और जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो भी ब्रह्म है, तुम्हारे पड़ोस में जो रहता है वो भी ब्रह्म है, और महाराज जो तुम्हारे ऊपर नीचे रहते हैं वो भी, और वो भी नहीं उस ये मकान भी क्या है, ब्रह्म है महाराज, उससे अतिरिक्त ये किनको समझ में आ गया, उन महाराज ब्राह्मणियों को, बिना पढ़ी लिखी ब्राह्मणियों को समझ में आ गया। तो आगे का प्रसंग जो है कर लेंगे, बहुत सुंदर समझने योग्य चीज है, हम कहां गलती करते हैं यही हमको समझना है। तो आज जो है इतवार है, आप लोगों के पास समय हो तो एक भजन सुना दें, अगर ना हो तो फिर गीता पाठ कीजिए, क्योंकि आज तो छुट्टी तो मना ही लो कम से कम एक दिन। तो आपको जो है एक साधारण सा लेकिन असाधारण अर्थ लिए हुए छोटा सा भजन, और उसके बाद गीता पाठ का आनंद लें। इस विज्ञानमय कोष से ऊपर उठने के लिए, आनंदमय कोष में पहुंचने के लिए महाराज, है ना, क्योंकि अंतिम तो वही है, उसके बाद तो समझना समझाने का कुछ कार्य नहीं रह जाता, ना वहां पर स्वयं अभी आप आत्मषटक का पाठ करेंगे और देखेंगे, न मैं गुरु हूं, न मैं शिष्य हूं, न मैं वेद हूं, न वेद का ज्ञान हूं, कुछ कुछ भी नहीं रह जाता वहां पर। तो इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए जो ध्येय है क्या होना चाहिए और कैसा जीवन होना चाहिए, बस वही ये समझाने का प्रयत्न है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद पाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से ते चलो। कृष्ण गोविंद गो लगाते चलो, मन को विषयों के देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको रात दिन संयम के कोड़े लगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद। भगवान कहते हैं अर्जुन से, मां मनुस्मर युद्ध चाह, दोनों कार्य करने हैं, प्रभु का स्मरण भी और संसार भी। इसलिए
नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। सद्गुणों का परम धन कमाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। सद्गुणों का परम धन कमाते चलो, मन को विषयों के विष से चलो। कृष्ण गोविंद गोपा गाते चलो, मन को विषयों के।
और यदि आपके ऊपर सत्संग का प्रभाव पड़ गया है और अगर सत्संग को आपने समझ लिया है तो ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। क्या
दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर धर्म भूलो नहीं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर धर्म भूलो नहीं। धर्म धन का खजाना लुटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। धर्म धन का खजाना लुटाते चलो, मन को विषयों के विष से हे चलो। कृष्ण गोविंद गोपा गाते चलो, मन को विषयों के।
और प्रभु को प्राप्त करने की जो आशा है उसमें बिल्कुल भी लेश मात्र भी जो है प्रमाद न आने दें। कैसे
वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, हम भी पाएंगे प्रभु को कभी ना कभी। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, हम भी पाएंगे प्रभु को कभी ना कभी।
ऐसा विश्वास दिल में जगाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। ऐसा विश्वास दिल में जगाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से। बोली कृष्ण कन्हैया लाल।